ओम शांति। पिछले 3 दिनों में राजयोग अभ्यास के इन प्रातःकालीन सत्रों में आपने राजयोग की विधि को समझा और उसका अभ्यास भी किया। राजयोग में जैसे आत्मा के ज्ञान का महत्व है, परमात्मा के परिचय का महत्व है, ऐसे ही कर्मों की समझ का भी महत्व है, क्योंकि इस संसार को कर्म क्षेत्र कहा गया है और हम सभी आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कर्म करने के लिए ही आते हैं। आत्मा जब इस शरीर को धारण करती है तो कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करती है। तो एक बहुत आम बात जो हम सुनते रहते हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे, एज यू सो सो यू रीप, या विज्ञान कहता है एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो हम कर्म करते हैं लेकिन हर एक कर्म का परिणाम समय स्थान व्यक्ति के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। भले ही देखने में हमें लगता है कि हम एक जैसे कर्म कर रहे हैं, तो जब हम उसे कर रहे हैं तो वो एक क्रिया होती है, लेकिन जब हमारे भाव उसके साथ जुड़ते हैं तो वो कर्म का रूप लेती है और इसीलिए उसके परिणाम अलग अलग होते हैं। जैसे देखना एक क्रिया है, सुनना एक क्रिया है, बोलना एक क्रिया है, लेकिन देखने का भाव सबका एक जैसा नहीं होगा। किसी की दृष्टि में देखने में प्रेम हो सकता है, किसी के देखने में नफरत का भाव हो सकता है, किसी की दृष्टि बुरी हो सकती है। एक गुरु की दृष्टि होती है तो कहते हैं नजर से निहाल हुए गुरु की दृष्टि पड़ती है। तो देखने का कर्म एक ही है लेकिन उस कर्म के परिणाम अलग अलग हैं, क्योंकि उसके पीछे भाव अलग अलग हैं। यदि कोई किसी लक्ष्य को लेकर के कार्य कर रहा है लेकिन मजबूरी से कर रहा है, करना नहीं चाहता है लेकिन कर रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति है वो उसी कार्य को कर रहा है लेकिन बहुत उमंग उत्साह से कर रहा है, लगन से कर रहा है, तो परिणाम भिन्न हो जाएंगे, क्योंकि कर्म करने के पीछे भाव भिन्न हो गया। तो कई बार ये सवाल हमारे मन में आता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती, और कोई तो कुछ मेहनत नहीं करते लेकिन बहुत सफल होते हैं। तो उसका कारण यही है कि उस कर्म के पीछे जो हमारा भाव है वो उस कर्म के परिणाम को बदल देता है, उसके समय को भी बदल देता है, उसके फल का जो समय हमें प्राप्त, जिस समय वो फल हमें प्राप्त होने वाला है उस समय में भी वो परिवर्तन कर देता है। इस संसार में आत्मा आई है कर्म करने के लिए, तो कर्मों का प्रभाव भी आत्मा पर ही पड़ता है, यानी आत्मा कर्मों के लेप शेप से न्यारी नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ कई शास्त्रों में ये कहा गया कि आत्मा अपने स्वरूप में शुद्ध है, पावन है, उसके ऊपर कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता है। शरीर के द्वारा कर्म होते हैं और शरीर ही उन कर्मों का फल भोगता है, लेकिन आत्मा शरीर के द्वारा कर्म कर रही है, आत्मा इस शरीर की ड्राइवर है। तो जैसे हम कार और ड्राइवर को समझते हैं, कार जड़ है और ड्राइवर चेतन है, और यदि एक्सीडेंट होता है तो हो सकता है कार डैमेज होती है और ड्राइवर को कोई चोट नहीं लगती है, लेकिन फिर भी दोषी कौन? दोषी हम किसको कहेंगे? कार को कहेंगे या ड्राइवर को कहेंगे? ड्राइवर के गलत निर्णय के कारण ही एक्सीडेंट हुआ है। तो आत्मा जैसा कर्म शरीर के द्वारा करती है, वैसे ही फल हम शरीर के माध्यम से भोगते हैं, क्योंकि मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा की शक्ति है, और इसीलिए निर्णय हमारे आत्मा के द्वारा ही होते हैं कि कौन से कर्म हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, कौन से कर्म हम पाप कर्म कर रहे हैं। फिर ये भी कहा जाता है कि आत्मा क्योंकि कर्मों का फल भोगती है तो अनेक योनियों में जाती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में ये भी बात कही गई, 84 लाख योनियों से आत्मा को गुजरना पड़ता है पाप कर्मों का फल भोगने के लिए, और इसीलिए हम मोक्ष चाहते हैं। बहुत हैं जो मुक्ति और मोक्ष की कामना करते हैं ताकि इस 84 लाख योनि के चक्र से आत्मा को मुक्ति मिल जाए, या फिर ये समझते हैं कि संसार में इतना दुख है तो क्यों इस दुख रूप संसार में हम फिर आए, इससे तो दुखों से सदा काल के लिए मुक्त हो जाएं। तो दो कारण हैं जो मुक्त होना चाहते हैं या मोक्ष पाना चाहते हैं, और उसी के लिए घर बार का त्याग करके कई बार संन्यास भी कर लेते हैं। तो वास्तव में परमपिता परमात्मा शिव ने इस सत्य ज्ञान को हमारे सामने रखा कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में चक्र नहीं लगाती। इस प्रकृति का नियम है, जैसा बीज होता है वैसा ही फल होता है। यदि हमने आम का बीज बोया है तो हमें आम का ही फल मिलने वाला है, और यदि हमने कोई और बीज बोया है, चाहे वो नारियल का है, पपीते का है, अंगूर का है, तो हमें पता है कि कुछ समय के बाद जो हमें फल मिलेगा वो वही मिलेगा। आम से कभी अंगूर नहीं हो सकता और अंगूर से कभी भी आम का फल नहीं मिल सकता। तो यही नियम मनुष्य योनि के लिए भी है कि मनुष्य जीवन का जो बीज है वो मनुष्य आत्मा है, और जब वो पुनर्जन्म लेती है तो मनुष्य के रूप में ही लेती है, और इसीलिए कर्मों का फल भी हम मनुष्य योनि में ही भोगते हैं। एक बार हम इस बात को अगर स्वीकार कर भी लें कि हमने 84 लाख योनि में चक्र लगाया है और फिर ये एक मानव जन्म हमें मिला है जो हमारे पुण्य कर्मों का फल है, तो यदि ये सही है तो सभी जो आज मनुष्य जीवन में है वो पूर्णतया सुखी होने चाहिए, क्योंकि सभी अपने पाप कर्मों का फल अन्य योनियों में भोग चुके हैं। कितनी निकृष्ट योनियां भी होती हैं उस दुनिया में, लेकिन हम पाते हैं कि ऐसा सत्य नहीं है, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में भी सभी सुखी नहीं हैं। 4 प्रकार के सुख मानव जीवन में माने गए, तन, मन, धन और संबंध। तो कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई संबंधों में दुखी है। आज किसी भी मनुष्य से पूछ लो, हो सकता है धन से संपन्न होंगे लेकिन तन में कोई ना कोई रोग होगा, नहीं तो संबंधों में ही कोई ना कोई तनाव होगा, या मन से कहीं ना कहीं अशांत होंगे। किसी ना किसी रूप में हर इंसान आज के संसार में दुखी है। तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि हमने अपने कर्मों का फल समाप्त नहीं किया, क्योंकि कुछ भी बुरा हमारे जीवन में होता है तो हम यही कहते हैं मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जो मुझे ये फल मिल रहा है, मैंने तो अपने इस जीवन में किसी को दुख नहीं दिया, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है। तो हम मन ही मन ये सवाल भगवान से करते हैं या प्रश्न हमारे मन में उठता है। पर क्योंकि आत्मा अजरमर अविनाशी है और वो मनुष्य रूप में ही जन्म लेती है, कई बार हम देखते हैं छोटे बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म से ही अपाहिज होते हैं, जन्म से ही उनका मानसिकता कमजोर होती है या कोई ना कोई रोग से पीड़ित होते हैं। अब 84 लाख योनि भोगने के बाद ऐसा कौन सा कर्म उसने किया, अभी तो जन्म ही लिया है, जो वो पीड़ित है। और ना सिर्फ अब उस बच्चे के साथ वो खुद, उसके परिवार वाले भी दुख भोगने वाले हैं, क्योंकि जिसके साथ संबंध होता है उसका प्रभाव उस पर भी पड़ता है। तो ये सिद्ध करता है कि मनुष्य आत्मा अपने कर्मों का फल मनुष्य रूप में ही भोग रही है। उसके जीवन की गति पशु जैसी हो सकती है, लेकिन वो पशु नहीं बनते हैं। आज हम देखते हैं कोई भिखारी है, अगर वो भीख मांग रहा है तो उसे कोई जो खिलाता है वो भिखारी खाता है, और उसी गली में एक कुत्ता भी घूमता है मानो, या कोई और भी जानवर घूमता है और उसे भी कोई जो खाने को देता है वो खा लेता है। तो अब भिखारी पशु नहीं है, लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, पशु जैसी है। कई बार तो जानवर भी इतनी अच्छी स्थिति में रहते हैं, आज कुत्तों को लोग रखते हैं, घरों में पालते हैं, पेट्स को लोग गाड़ियों में घुमाते हैं, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखते हैं। उससे भी बदतर स्थिति में कौन है, वो इंसान है, ऐसा हम कहेंगे। तो यदि कर्म बुरे होते हैं तो जीवन की गति पशु तुल्य हो जाती है, लेकिन वो पशु बनता नहीं है। आज कितने इंसान हैं जो बोझ ठोकर के अपना जीवन यापन करते हैं, जानवरों पर भी लोग बोझ ढोते हैं, तो जीवन का स्तर वो हो गया। और अनेक प्रमाण हमारे सामने मिलते हैं, पैरासाइकोलॉजी है जिसमें पूरी स्टडी करते हैं, अगर कोई अपने पुनर्जन्म का वृत्तांत बताता है तो आज तक जितने भी वृत्तांत सामने आए हैं पुनर्जन्म के, किसी ने कभी नहीं कहा कि मैं पूर्व जन्म में कोई गधा था, घोड़ा था, या सांप था, बिच्छू था, या जो भी कितनी ही योनियां हैं इस संसार में। वो हमेशा कहता है मैं फलाना था, वहां रहता था, मेरे माता पिता, मेरा परिवार, जो भी। और जब उनको फॉलो अप करते हैं तो पता चलता है कि काफी हद तक वो सही होते हैं, 100% नहीं तो 90% 80% तक वो सही होते हैं, क्योंकि भूलना मनुष्य का स्वभाव है। हम अगर अपने वर्तमान जन्म को भी देखते हैं तो 10 दिन पहले हमने क्या किया था, क्या खाया था, हमें जोर लगा करके सोचना पड़ता है, हमें सब कुछ याद नहीं रहता। जो जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वही हमें याद रहती हैं, और ये हमारे लिए वरदान है, क्योंकि यदि हम सब स्मृतियों को याद रखेंगे, पूर्व जन्म की स्मृतियां भी यदि हमारे साथ होंगी तो जीवन ही बोझ बन जाएगा। इस वर्तमान जन्म के तनाव ही हम नहीं झेल पाते हैं तो पूर्व जन्म की जो भी मुश्किलें हैं उनको हम वर्तमान में कैसे झेल पाएंगे। और इसीलिए ये परमात्मा से हमें वरदान है कि हम पूर्व जन्म को पूरी तरह से भूल जाते हैं, लेकिन कुछ इवेंट्स में जब अनायास मृत्यु होती है, काले मृत्यु होती है, जिनकी दुर्घटना में मृत्यु होती है और उनके कोई ऐसे आवश्यक कार्य रह जाते हैं, उन्हें पूर्व जन्म कभी स्मृति में आता है। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी जो आज किया जाता है, बहुत लोग इसे एक इलाज के रूप में, चिकित्सा के रूप में प्रयोग करते हैं। हिप्नोटिक रिग्रेशन जिसे कहते हैं, उसमें व्यक्ति को सम्मोहित करके पूर्व जन्म की स्मृतियों में ले जाते हैं और वर्तमान समय जो उसके कष्ट हैं, उसका कारण कहीं पूर्व जन्म में है, ऐसा उससे निदान होता है। तो फिर ये भी देखने में आता है कि वो कभी नहीं कहते कि पूर्व जन्म में वो कोई जानवर थे या कोई अन्य थे, लेकिन मनुष्य थे। हो सकता है वो किसी दूसरे देश की भाषा बोलते हैं जहां वो पूर्व जन्म में थे, वर्तमान जन्म में वो इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म में वो व्यक्ति स्पेन में था। तो रिग्रेशन के समय ऐसे कहेंगे कि वो कैसेट जैसे रिवाइंड हो गई, तो वो स्पैनिश बोलता है और आज उसे स्पैनिश का एक शब्द भी नहीं आता है, लेकिन वो स्पैनिश भाषा बोल रहा है। तो वो भी सिद्ध करता है कि पूर्व जन्म में मनुष्य किसी अन्य योनि में नहीं था। तो जो प्रमाण भी मिलते हैं वो ये सिद्ध करते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों का फल मनुष्य योनि में ही भोगता है। तो ये जो मोक्ष के लिए हम सोचते हैं इतनी लाख योनियों से गुजरने की बजाय हम मोक्ष में जाएं, उसकी आवश्यकता नहीं, अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। और ये संसार सदा दुख रूप भी नहीं है। आज कलयुग जो है वो इस सृष्टि चक्र की अंतिम अवस्था है। जैसे मनुष्य की आयु की वृद्धावस्था उसके जीवन की अंतिम अवस्था है, तो अंतिम अवस्था में तन के रोग होते हैं, दिमाग कमजोर होता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। तो उसको देख करके लोग सोचते हैं, देखो बेचारा कितना दुखी है, पर सारा जीवन उसने दुख में नहीं बिताया है। अपना 3/4 से अधिक जीवन उसने सुख में बिताया है। तो ये सृष्टि भी केवल अपने अंतिम पड़ाव पर बहुत दुखमय हो जाती है, कष्टमय हो जाती है, लेकिन जब ये सतयुग, त्रेता, द्वापर युग अपना 3/4 भाग ये संसार सुख रूप होता है और आत्मा की अभिव्यक्ति, यानी जब आत्मा मोक्ष में है तो उसके सभी गुण सुषुप्त अवस्था में है, कोई अनुभव नहीं है। लेकिन जब वो इस तन में आती है, इस शरीर में आती है, तभी वो अपने गुणों को अभिव्यक्त करती है, उसे अनुभव करती है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये अनुभूतियां शरीर के माध्यम से ही होती हैं। और आत्मा क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच की एक्टर है, तो वो कर्म किए बिना रह भी नहीं सकती है। आज एक अभिनेता को हम कहें कि आपको एक्टिंग नहीं करनी है, तो क्या वो एक्टिंग किए बिना रह सकता है? हम अपने लिए ही देखें, मानो कभी किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उसका पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो डॉक्टर प्लास्टर लगा देगा और कहेगा 1 महीने तक आपको बिल्कुल चलना नहीं है, बेड रेस्ट में रहना है, चाहे वो कमर है, पैर है। तो 1 हफ्ता वो बेड रेस्ट में रहेगा, उसे बहुत अच्छा लगेगा कि सब कुछ हाथ में मिल रहा है, सब इतनी संभाल कर रहे हैं, लेकिन 1 हफ्ते के बाद बोर होने लगेंगे और फिर ये लगेगा कब ये प्लास्टर निकलेगा और कब हम चल सकेंगे, कब हम अपना काम खुद कर सकेंगे, कब तक दूसरे हमारे लिए करते रहेंगे। तो डॉक्टर से बार बार पूछेंगे कब ये प्लास्टर निकलेगा। तो क्या करना चाहते हैं हम? ज्यादा समय आराम नहीं कर सकते, लेकिन कर्मशील रहना चाहते हैं, कर्म करना चाहते हैं। तो ये आत्मा का स्वभाव है कि वो कुछ समय परम धाम में जाकर के विश्राम की स्थिति को अवश्य अनुभव करती है। लेकिन पुनः फिर वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आना चाहती है, कर्म करना चाहती है, उस सुख को अनुभव करना चाहती है। जैसे हम कहेंगे आप सभी यहाँ पर आए हैं तो आपको कैसा लगा, कैसा लगा, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बोलिए, अच्छा लगा। हाँ तो फिर क्या आप दोबारा आना चाहेंगे, हाँ जो समझते हैं हम दोबारा आना चाहेंगे वो हाथ उठाइए। देखिए लगभग 100% दोबारा आना चाहेंगे। तो दोबारा क्यों आना चाहेंगे, क्योंकि वो सुख हमें मिला है, वो आनंद हमें मिला है जो हमारी चाह थी। तो ऐसे ही आत्मा इस सृष्टि पर पुनः आना चाहती है, क्योंकि जो अनुभूतियां हैं उसे वो इस सृष्टि पर ही होती हैं। तो इसीलिए इस संसार में मोक्ष है ही नहीं। बहुत विस्तार से ये एक अलग विषय है जिसे सेवा केंद्रों पर आप जाकर के समझ सकते हैं। लेकिन कर्म की गति के अनुसार हम आत्माएं पुनः इस सृष्टि पर आना चाहती हैं, और ये चक्र अनवरत चलता ही रहता है। कोई भी एक्टर इस ड्रामा के पार्ट से अलग नहीं हो सकता है। तो चार प्रकार के कर्म हम अपने जीवन में करते हैं। पहले कर्म है पाप कर्म, दूसरे हैं पुण्य कर्म, तीसरे हैं सत कर्म, और चौथे हैं अकर्म। पाप कर्मों के लिए कहा जाता है चोरी करना, झूठ बोलना, हत्या करना, किसी को धोखा देना, दुख देना, ये सब पाप है। तुलसीदास जी ने एक बात कही, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान। यानी देह अभिमान वश जो भी हम कर्म करते हैं वो सब पाप कर्म के खाते में जाते हैं। विकारों के वश होकर के हम जो भी कर्म करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का प्रभाव जब हमारे मन पर होता है, ईर्ष्या द्वेष, उसके प्रभाव से जो भी कर्म हम करते हैं वो सब पाप कर्म हो जाते हैं। स्वार्थ भाव से हम जो कर्म करते हैं वो भी पाप कर्म होते हैं। कुछ कर्म ईश्वर से बेमुख करने वाले होते हैं, यानी हमें ईश्वर से दूर करने वाले होते हैं, वो भी पाप कर्म के खाते में आते हैं। तो यदि हम इन्हें पाप कर्म कहते हैं तो फिर हमें ये भी समझना होगा कि जैसे हमने कहा चोरी करना, झूठ बोलना, हत्या करना है तो पाप, लेकिन किन्हीं स्थितियों में, समय स्थान व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार उनका परिणाम भी बदलता है। झूठ बोलना पाप है पर कहीं कहीं सच बोलना झूठ बोलने से ज्यादा पाप हो जाता है। जैसे हम एक कहानी सुनते हैं कि एक कसाई जो है वो गाय को काटना चाहता था पर किसी तरह से वो गाय भाग गई, तो वो गाय को पकड़ने के लिए दौड़ने लगा और रास्ते में एक साधु खड़ा था और उसने देखा गाय भाग रही है और फिर उसकी नजर कसाई पर पड़ी तो वो समझ गया कि गाय क्यों भाग रही है। अब वो कसाई जब उसके पास पहुंचा तो उसने पूछा कि गाय कहाँ गई, साधु ने देखा था कि गाय कहाँ गई लेकिन वो झूठ बोल देता है, मुझे नहीं पता, जबकि उसे पता है। तो अब ये झूठ बोलना पाप नहीं हुआ, ये झूठ बोलना क्योंकि किसी का जीवन बचाने के लिए उसने वो कहा तो वो उसका पुण्य हो गया। तो किसी के कल्याण के लिए अगर मैंने झूठ बोला, किसी का जीवन बचाने के लिए अगर मैंने झूठ बोला तो फिर वो उतना पाप नहीं होता। एक सरहद पर सिपाही खड़ा है और उसकी ड्यूटी है कि मैं सरहद पर इसलिए हूं कि कोई भी दुश्मन मेरी सीमा में प्रवेश न करे। अब यूं तो हत्या करना पाप है लेकिन अगर कोई दुश्मन सामने आ गया और वो गोली न चलाए तो गोली न चलाना गोली चलाने से ज्यादा पाप हो जाता है, क्योंकि अगर उसने गोली नहीं चलाई तो वो दुश्मन हमारे देश में प्रवेश हो जाएगा। तो समय स्थान स्थिति के अनुसार कई बार वो कर्म कैसे किया गया, किस भाव से किया गया, उससे उस कर्म के परिणाम में अंतर आता है। अब जैसे हमने झूठ बोलने की बात की, कई बार घरों में होती हैं छोटी छोटी घटनाएं, मानो बच्चा है उसने कांच का गिलास तोड़ दिया और आपने देख लिया कि बच्चे ने कांच का गिलास तोड़ा और आप माँ पूछती है बच्चे को, तो उसको पता है कि यदि मैंने सच बोल दिया तो माँ मारेगी या डांटेगी, तुरंत बोल देगा मैंने नहीं तोड़ा। अब माँ गुस्सा करेगी, नाराज होगी, इसीलिए उसने झूठ बोला। तो उसको झूठ बोलने के बुलवाने के निमित्त कौन बना? हम बने। तो ये डबल पाप हो गया कि एक तो उससे झूठ बोलने के लिए हमने मजबूर किया और दूसरा हमने उसके ऊपर गुस्सा किया, वो भी करना पाप है। अब वही बच्चा अपने पिता के पास जाएगा और चुपचाप सब बात बता देगा कि डैडी ऐसा हुआ, मेरे से ये ग्लास टूट गया, आप माँ को मत बताना। और डैडी जो है वो उसे प्यार से कहेगा कोई बात नहीं बेटा, दूसरा ग्लास आ जाएगा। अब वो उससे जाकर सच क्यों बोल रहा है? या दादा दादी से जाकर सच बोल देगा मैंने क्या किया? उसको पता है वो मुझसे नाराज होने वाले नहीं है, वो मुझे और ही प्यार करने वाले हैं। तो सच बोलने की हिम्मत आ जाती है उसके अंदर। तो कई बार जब हम किसी से उल्टा कर्म करवाने के निमित्त बनते हैं तो डबल पाप के भागी भी हो जाते हैं। तो पाप कर्म माना इस तरह से किए गए कर्म। कई बार आज विकारों के वश हम देखते हैं जब उसकी अति हो रही है, काम विकार उसकी अति के रूप में आज बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं दुनिया के अंदर, क्रोध की अति के रूप में हत्या लोग कर देते हैं। इतना क्रोध में मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है कि वो किसी की जान लेने में भी देरी नहीं करते। ऐसे समाचार आए दिन समाचार पत्रों में होते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं होता जो क्रोध के कारण कोई हिंसा या हत्या का समाचार न हो। लोभ के कारण आज भ्रष्टाचार संसार में फैला हुआ है, काला बाजारी है, मिलावट है, जो भी है वो सब लोभ के कारण है। आज मोह है तो भाई भतीजावाद है, हम योग्य व्यक्ति को स्थान नहीं देते लेकिन जो मेरे अपने हैं उन्हें हम प्राथमिकता देते हैं, ये मोह का अति का रूप है। अहंकार है, उसके कारण शोषण है, और अहंकारी के लिए तो कहते हैं बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। गुण है उसके अंदर लेकिन उसका लाभ दूसरों को नहीं मिलता है। तो जहां मैंपन और मेरापन आता है वो अहंकार का रूप लेने लगता है, लेकिन नम्रता का गुण आम के वृक्ष की तरह है। जैसे आम का वृक्ष जब फलता है तो और ही छुप जाता है और उसके फलों तक हमारी पहुंच होती है और ही छायादार भी हो जाता है, तो उसके प्राप्तियों का लाभ दूसरों को मिलता है। और जब हम पाप कर्म करते हैं तो उसके परिणाम दुख और अशांति के रूप में जीवन में आते हैं, क्योंकि हर कारण का परिणाम होगा, हर कर्म का फल होगा। जैसे बताया कि एक्शन की रिएक्शन अवश्य होगी, तो उसके परिणाम आते हैं तन के रोग के रूप में, कोई ना कोई रोग तन को लगा रहेगा, मन कहीं ना कहीं दुखी और अशांत परेशान होता रहेगा, या धन में खींचातान होगी, धन के कारण संघर्ष होगा, या संबंधों में ही हमारे से सब संतुष्ट नहीं होंगे, कहीं ना कहीं आपसी संबंधों में टकराव बना रहेगा, खुश नहीं होंगे, चाहे हम कितना भी खुश करने की कोशिश करते हैं लेकिन खुश नहीं कर पाते हैं, और ये भी देखने में आता है आज समाज में। कितना भी व्यक्ति पद पर है, प्रभावशाली है, उसके अंदर 100 गुण होंगे, लेकिन लोगों का स्वभाव क्या होता है, अगर उसके अंदर एक भी कमी है, एक भी अवगुण है, तो वो अवगुण ज्यादा दिखाई देगा, उनके गुण कम दिखाई देंगे। आपसी संबंधों में भी ऐसा ही होता है कि दूसरे की कमियों को हम ज्यादा देखते हैं, उनके जो गुण और विशेषताएं हैं उन्हें हम नहीं देखते। एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, वो अपने स्टूडेंट्स को एक प्रयोग दिखा रहे थे। तो एक सफेद कागज पर एक कॉर्नर में काला धब्बा लगाया उन्होंने, और फिर स्टूडेंट से पूछा कि ये क्या है। तो 45 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 40 स्टूडेंट्स ने कहा कि ये काला धब्बा है, और सिर्फ 5 ने कहा कि ये वाइट पेपर है। अब वो धब्बा तो एक कोने में छोटा सा धब्बा लगा हुआ था, लेकिन फिर भी क्या दिखाई दे रहा है, ये धब्बा। जैसे हम कहेंगे एक वाइट साड़ी है, इस पर अगर एक दाग लगेगा तो वो दाग हमें ज्यादा दिखाई देगा कि इस पर वो दाग लगा हुआ है। तो एक मनोविज्ञान के अनुसार भी हम वो ज्यादा देखते हैं जो थोड़ी भी कमी और अवगुण है, और यही कारण है कि संबंधों में असंतुष्टता। तो ये कलियुग की मनोवृत्ति मनुष्य की है, किसी ना किसी रूप में अपने इन पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप हम इन चारों रूप से दुखी होते रहते हैं। और दूसरे प्रकार के जो कर्म हैं वो हैं पुण्य कर्म। पुण्य कर्म हम कहेंगे दूसरों की सेवा करना, किसी भी प्रकार का दान करना, सहयोग देना। तो आज अनेक प्रकार की समाज सेवा हमारे समाज में होती है, अन्न दान करते हैं, रक्त दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, अस्पताल बनाते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं, तो मंदिर बनवाते हैं, कई प्रकार के दान पुण्य हम करते हैं। तो वो हम समझते हैं कि हमारा पुण्य जमा हो रहा है, और कई बार इस भाव से भी करते हैं कि हमसे पता नहीं कितने पाप हो जाते हैं, अज्ञानतावश हम नहीं जानते, तो थोड़ा पुण्य कर देना चाहिए ताकि उस पाप कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। लेकिन जो दान हम करते हैं उसमें दो बातें हैं जो उसे पुण्य बनाती हैं। पहली बात तो किस भाव से वो दान किया गया। दान के लिए ये प्रसिद्ध है कि अगर आपने सीधे हाथ से दान किया है, दाएं हाथ से अगर आपने दान किया है, तो बाएं हाथ को भी वो पता न चले। गुप्त दान महादान माना गया। लेकिन अगर हम दिखावे के लिए दान करते हैं, नाम प्राप्त करने के लिए, मान प्राप्त करने के लिए, महिमा प्राप्त करने के लिए यदि हम दान करते हैं, आजकल हम देखते हैं कोई अस्पताल बनाएंगे या मंदिर बनाएंगे तो उनका नेम प्लेट लगा होता है, या मंदिर की हर सीढ़ी पर, हर वो मार्बल की टाइल पर दानदाता का नाम लिखा हुआ होता है। तो यदि मैंने दान किया और मैंने संकल्प भी किया कि मैंने दान किया है, तो ही 1/4 पुण्य समाप्त हो जाता है। और यदि हम बहुतों को वर्णन कर देते हैं, देखो मैंने इतना किया, हम इतना करते हैं, तो आधा पुण्य खत्म हो जाता है। और यदि हमने उससे जो कहा सदा के लिए एक नाम छपवा दिया अपना, तो 3/4 पुण्य उसका खत्म। और मानो उस दान को लेकर के कहीं ना कहीं हमारी कहा सुनी हो गई, यानी जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, और उसके कारण कहीं ना कहीं मन में द्वेष भाव आ गया या जो भी, तो वो पूरा खत्म। कई बार दान की बजाय हमने अपना पाप कर्म बना लिया। फिर जिसको हम दान करते हैं, मानो किसी भिखारी को मैंने दान किया, मैंने समझा इसकी आवश्यकता है, ये अपाहिज है, भिखारी है, या जो भी दया का पात्र है, इनके लिए मुझे करना चाहिए, जैसे अनाथ बच्चों के लिए करते हैं और भी बहुत लोगों के लिए, और उसने अगर हमारे दान का दुरुपयोग किया, किसी भिखारी को आपने दिया और उसने जाकर शराब पी ली, क्योंकि ऐसे लोग व्यसनों में भी लिप्त होते हैं, तो वो पैसा लेते हैं और जाकर के उसे बुरा जुआ खेल लेते हैं, जाकर के शराब पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं। मेरे पैसे से उसने पाप कर्म किया तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर भी आएगा, वो दान हमारा निष्फल हो जाएगा। एक बार ऐसे ही रोटरी क्लब था और वो अपने मेंबर्स से पैसा इकट्ठा करके गरीबों को उनकी आवश्यकताओं के लिए उनको दान करते हैं, तो उन्होंने बॉम्बे की जो चाल होती है, झोपड़पट्टी होती है, वहां पर बहुत गरीब, उन्हें सर्दियों के दिनों में देखा कंबल नहीं है इनके पास, तो सभी को एक एक कंबल दिया। फिर कुछ महीने के बाद कि अब तो वो सुख से होंगे, कंबल मिला है सबको, तो देखा, निरीक्षण किया कि सभी के पास कंबल है, तो देखा कि 90% लोगों ने अपने वो कंबल बेच दिए, और वो कंबल बेच करके वो लोगों ने शराब पी ली, क्योंकि जिसको आदत होती है उसको किसी भी तरह से पैसा चाहिए। एक बार ऐसे ही एक भिखारी, उसने एक लॉटरी का टिकट खरीदा, फिर उससे पूछा, अगर तुम्हारी ये लॉटरी निकल गई तो फिर तुम क्या करोगे, भीख मांगना बंद कर दोगे? तो उसने कहा, नहीं, अगर मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गई जो कार है तो मैं कार में भीख मांगने जाऊंगा। तो धन की गरीबी नहीं है, कई बार इंसान के जीवन में चरित्र की गरीबी सबसे ज्यादा होती है। तो जो भी पात्र है, जिसको हम दान दे रहे हैं, उसे हमें योग्य बनाना है, उसका जीवन परिवर्तन हो जाए, वो सच्ची सेवा है। हम किसी को कब तक खिलाते रहेंगे? मानो कोई भिखारी आपके द्वार पर आता है, एक महीना आप रोज उसे भोजन खिला रहे हैं दया करके, पर अब वो किसी दिन आया और आपको बहुत ही कोई काम है, आप घर से निकल रहे हैं, ताला लगा रहे हैं, और उसी समय वो पहुंचता है और अब कहते हैं, आज तो हम आपको भोजन नहीं करा सकते क्योंकि हम जा रहे हैं, भोजन बनाया भी नहीं है, लेकिन अब उसको आदत पड़ चुकी है, हर दिन आपने उसको भोजन खिलाया है और आज नहीं खिलाया, तो वो नाराज होगा और हो सकता है कुछ अपशब्द भी आपको कहने लगे और आपको भी गुस्सा आ जाए और आपका आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो जो एक महीने आपने इतना पुण्य किया उसको खिला खिला करके सब समाप्त। तो यहाँ पर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इसीलिए आध्यात्मिक सेवा को, रूहानी सेवा को हम महत्व देते हैं कि वो आत्मा समर्थ बन जाए, वो सक्षम बन जाए, वो स्वयं कमाने योग्य बन जाए, जीवन भर भिखारी ना रहे, लेकिन उस लायक बन जाए कि वो अपने श्रेष्ठ कर्म कर सके। वो सच्ची सेवा, सच्ची समाज सेवा है, व्यक्ति को किसी योग्य बना देना। और तीसरे प्रकार के जो कर्म हैं, सत्कर्म। सत्कर्म परमात्मा जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और वो जो हमें श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत के प्रमाण जो कर्म हम अपने जीवन में करते हैं वो सत्कर्म कहलाते हैं, जिसके लिए कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नारायण होए और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी हो। तो कौन से ऐसे कर्म जो मनुष्य को देवता बना देते हैं, मनुष्य के अंदर दिव्यता जागृत कर देते हैं, यानी देवताएं भी मनुष्य हैं, हमारे जैसे ही मनुष्य हैं, लेकिन क्यों वो देवता कहलाते हैं? वो सर्वगुण संपन्न हैं, दिव्यता संपन्न हैं, पवित्रता है उनके जीवन में, उनके कर्म इतने श्रेष्ठ हैं कि वो पूज्य मनुष्य हैं। आज हम उनकी पूजा करते हैं मंदिरों में। तो कैसे उनके कर्मों में दिव्यता आई, परमात्मा की श्रीमत अनुसार जो कर्म किए जाते हैं उसके अनुसार जीवन में दिव्यता आने लगती है, और जो कर्म निर्विकारी होकर के किए जाते हैं, जैसे पाप कर्म विकार के वश किए गए कर्म पाप कर्म हैं, लेकिन जब हम निर्विकार होकर के कर्म करते हैं तो वो कर्म सत्कर्म होते हैं। आत्मिक भाव से, आत्मिक दृष्टि से जो कर्म किए जाते हैं, जो कर्म हमें ईश्वर के समीप लाने वाले होते हैं, वो सत्कर्म होते हैं, और वो परमात्मा की याद में किए गए कर्म, जिसे हम कर्म योग कहते हैं। जो भी कर्म हम करते हैं वो हम ईश्वर को समर्पण करते हैं। करण करावनहार वो परमात्मा है, मैं निमित्त हूँ। उस भाव से किए गए कर्म, जैसे हमने पहले भी बात की कि कर्म के पीछे जैसे ही भाव जुड़ता है, जैसा भाव कर्म के साथ जुड़ा वैसे ही उसके परिणाम में अंतर आता है। तो जैसे ही ईश्वरीय भाव कर्म के पीछे जुड़ा तो वो कर्म का परिणाम बदल जाता है, कर्म रूपी बीज में अंतर आ जाता है। जैसे हम देखते हैं कर्म की तुलना बीज से की गई है, तो हम कैसा बीज बो रहे हैं उसमें जो फल आएगा उसके परिणाम में बहुत सारे कारक होते हैं। पहले तो हमें जमीन को उपजाऊ बनाना होता है। अगर जमीन में हल नहीं चलाया, बंजर भूमि में बीज बो दिया तो हमें फल नहीं मिलेगा। जमीन उपजाऊ बनाई तो जो बीज बोया उसकी क्वालिटी कैसी है, फिर बोने के बाद हमने उसे पानी दिया, खाद दी, धूप लगी उसको, यानी उसकी संभाल की, रक्षा की, तब हमें वो फल मिलने की संभावना है। अच्छा फल लग जाता है तो कहीं हमने उसे कच्चा तो नहीं तोड़ लिया। अगर हमने कच्चा ही फल तोड़ लिया तो फिर भी हमने वो सफलता पूर्वक उस फल को प्राप्त नहीं किया। चलो फल पक गया तो पकने के बाद भी क्या सही समय पर तोड़ा, वो सड़ तो नहीं गया। तो कितने सारे कारक हैं जो फल तक आने में निमित्त बनते हैं। तो ऐसे ही जब हम परमात्मा की श्रीमत अनुसार कर्म करते हैं तो उस कर्म के एक बीज से जो हमें फल प्राप्त होते हैं वो कई गुना होते हैं। जैसे हमने आम का बीज बोया तो आम का बीज बोने के बाद कई वर्षों तक हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, पर एक आम से हमें कई आम मिलते हैं, और सिर्फ हम ही नहीं खाते, पीढ़ियां भी खाती हैं। जैसे कहते हैं दादा बोए तो पोता खाए, आम के पेड़ के लिए कहावत है कि दादा बोता है तो पोता खाता है। तो ऐसे ही हमने एक कर्म किया सत्कर्म में, तो उसके परिणाम स्वरूप हम वर्तमान में ही उसका फल अनुभव नहीं करते, लेकिन वो फल जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ संचित कर्म के रूप में, प्रालब्ध के रूप में, भाग्य के रूप में भी उसे प्राप्त होता है। जैसे हम देखते हैं एक ही समय पर कई बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन एक बच्चा जो है वो करोड़पति के घर में जन्म लेता है और एक बच्चा जो है वो गरीब घर में जन्म लेता है। तो जिसने करोड़पति के घर में जन्म लिया वो जन्म लेते ही करोड़पति हो गया, क्योंकि वारिस होता है बच्चा, उसने कोई प्रयत्न नहीं किया करोड़पति होने का, लेकिन जन्मते ही भाग्य से ही उसे वो करोड़ की प्राप्ति हुई है, क्योंकि उसके पूर्व जन्मों के प्रारब्ध, उसके कर्मों का परिणाम, अवश्य उसने कोई दान किया है, पुण्य किया है, सत्कर्म किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसे इतने श्रेष्ठ घर में जन्म मिला है। और जिसने गरीब घर में जन्म लिया, ऐसा नहीं कि वो करोड़पति नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन वो उसके कर्मों का फल होगा, उसके लिए उसे पुरुषार्थ करना होगा, तो जैसा कर्म वैसा फल वो पाएगा, भाग्य नहीं कहेंगे उसको। भाग्य हम उसे कहते हैं जो बिना मेहनत के हमें सहज प्राप्त हो जाता है, वो पूर्व जन्म की प्रारब्ध हमारे साथ आती है। तो जब हम सत्कर्म करते हैं तो अपने भाग्य का निर्माण हम करते हैं, वर्तमान में भी, यानी डबल फल हम पाते हैं, वर्तमान में भी हम पाते हैं और भविष्य में भी। कई बीज ऐसे होते हैं जो हमने बोया, एक बीज का एक ही फल मिलेगा। आपने गोभी का बीज बोया, एक गोभी का फूल आपको मिल जाएगा बस, फिर दोबारा गोभी चाहिए तो दोबारा बीज बोना पड़ेगा। कुछ बीज ऐसे होते हैं हमने बोए और वो बोने के बाद हमें कई फल मिले, लेकिन एक सीजन। मानो हमने टमाटर बोया या मिर्ची बोई या गेहूं बोया, लेकिन एक सीजन हमें एक गेहूं से बहुत सारे गेहूं मिलेंगे, लेकिन एक सीजन। लेकिन दोबारा दूसरे सीजन में चाहिए तो हमें दोबारा गेहूं बोना पड़ेगा। लेकिन वही अगर हमने आम का बीज बोया तो वो सदा काल का हो जाता है। तो सत कर्म इस श्रेणी के कर्म हैं। जो भी हमारे पूर्व में किए हुए कर्म होते हैं उनको भी हमारे सत्कर्म समाप्त करते हैं। अनेक पाप कर्म जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आत्मा कर लेती है, ज्ञान वश या अज्ञान वश हमने वो कर्मों के बोझ अपने साथ लिए हुए हैं, जिसे पाप की गठरी कहते हैं। तो अब जो समय है इस संसार चक्र के अनुसार, वो आत्मा के घर वापस जाने का समय है। तो इस समय के अनुसार हमें अपने जो पाप कर्म किए हुए हैं उन्हें भी समाप्त करना है, और साथ साथ हमें अपने श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी को भी जमा करना है। तो परमात्मा की याद में किए हुए श्रेष्ठ कर्मों से हम अपने पाप कर्मों का भी नाश करते हैं, उन्हें भी समाप्त करते हैं और साथ साथ अपने भाग्य का निर्माण भी करते हैं। तो कहते हैं इसकी तीन विधि है, आर, प्यार और मार। आर माना भोगना, कर्मों को भोगना। अगर हम सत्कर्म करते हैं तो उसका परिणाम होता है सुख, हर तरह से हमें सुख मिलता है, तन से भी हम निरोगी रहते हैं, मन भी हमारा प्रसन्न रहता है, धन भी हमें इतना सहज मिलता है कि जीवन की सभी आवश्यकताएं हमारी पूरी हो जाएं, संबंधों में भी हमें संतुष्टता मिलती है, स्नेह मिलता है, सहयोग मिलता है। तो ये चारों प्रकार के भाग्य आत्मा अपने जीवन में अनुभव करने लगती है। लेकिन अगर पाप कर्म अधिक हैं तो फिर हमें जो हमने कहा रोग भोगना ये सब, तो इनको हम भोग करके भी खत्म कर सकते हैं। और दूसरा है परमात्मा की याद से हम खत्म कर सकते हैं, और तीसरा है मार माना सजा पाकर के, धर्मराज की सजाएं, जिसे हमारे यहाँ कहा गया शास्त्रों में भी कि जब आत्मा की मृत्यु होती है तो वो कई सूक्ष्म सजाओं का अनुभव करती है, जिसे धर्मराज की सजाएं कहते हैं। तो जो भी पाप कर्म है आत्मा के, वो साथ लेकर के वो वापस परम धाम नहीं जा सकती, अपने घर नहीं जा सकती। जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है तो वो कोई भी इल्लीगल चीजें अपने साथ नहीं ले जा सकता। अगर इल्लीगल चीजें पकड़ी गई तो उसको जेल हो जाती है, नहीं तो फाइन देना पड़ता है, पेनल्टी देनी पड़ती है, उसकी सजा होती है। तो ऐसे ही कोई भी पाप कर्म हमें सब यहीं खत्म करके जाना होता है, जिसके ये तीन तरीके हैं, या तो हम भोग लेते हैं, नहीं तो भगवान की याद से हम खत्म करते हैं, योग बल से हम उसे अपने विकर्मों को समाप्त करते हैं, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ती हैं। तो फिर कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, कौन सा तरीका अपनाना चाहेंगे, क्योंकि खत्म करके तो जाना है, ये इल्लीगल है परम धाम जाने के लिए, ये इल्लीगल है, इसको यहीं समाप्त करना होता है। आत्मा शुद्ध कर्मों की पूंजी लेकर के ही ऊपर जा सकती, पुनः जिस पावन स्थिति में वो इस संसार में आती है उसी पावन स्थिति में आत्मा को वापस जाना होता है। तो हम कौन सा तरीका अपनाना चाहेंगे, कौन सा सहज तरीका है, सत्कर्म करना, परमात्मा की याद में कर्म करना, जिससे हम, जैसे अगर किसी को जेल में रखा जाता है, कोई पाप कर्म करता है, मानव हत्या कर देता है और उसे जेल हो जाती है, पर जेल में अगर उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो जो कार्य करता है वो बहुत अच्छे हैं, सुखदाई हैं, तो फिर उसकी सजा कम हो जाती है। अगर उसको उम्र कैद हुई है तो 10 साल में ही वो अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आ जाएगा। और ये भी हुआ कि डाकू जैसे लोग जिन्होंने बहुत हत्याएं की, निर्मम हत्याएं की, लेकिन उन्होंने समर्पण कर दिया। एक समय जब चंबल के डाकू बहुत हुआ करते थे तो गवर्नमेंट ने जयप्रकाश नारायण जी के समय पर ऐसा ऐलान किया कि जो डाकू समर्पण कर देंगे उनकी सजा माफ हो जाएगी, माना उनको हत्या के लिए फांसी नहीं होगी लेकिन फिर उनको खुली जेल में रखा जाएगा, बंद जेल में भी नहीं, और सरकार उन्हें सहायता देगी। तो उस समय जिन डाकुओं ने समर्पण कर दिया, बिल्कुल कितनी हत्याएं उन्होंने की हुई थी लेकिन उन्हें उसका कोई दंड नहीं मिला और उन्हें खुली जेल में रखा गया। और वहां पर आगरा में जो अपना सेवा केंद्र है, वहां ब्रह्मा कुमारी बहनों को कहा गया कि इनको आकर के जो भी ज्ञान, जैसे कल किरण बेदी जी अपना अनुभव सुना रहे थे कि कैसे तिहाड़ जेल में उन्होंने बहनों को बुलाया और कैदियों के लिए ये राजयोग का कोर्स, ज्ञान अभ्यास उन्हें कराया गया, तो कैसे परिवर्तन उन्होंने महसूस किया। तो ऐसे ही उन डाकुओं के जीवन में परिवर्तन होने लगा। और उसमें एक डाकू पंचम सिंह थे, वो डाकू पंचम सिंह सबसे खूंखार चंबल बिहार के डाकू थे, लेकिन इस ज्ञान को सुनने के बाद इतना परिवर्तन हुआ कि जैसे ही वो उस खुली जेल से अपनी सजा पूरी करके बाहर आए, उन्होंने अपने घर में, सरकार ने उनको जमीन दी, घर दिया, तो अपने घर में गीता पाठशाला शुरू कर दी और उनकी एक बेटी जो है वो समर्पित ब्रह्मा कुमारी बनी और वो ब्रह्मा कुमार बन गए। आज भी हैं वो, आज भी हैं, 85 वर्ष की उनकी आयु हो चुकी है, लेकिन आज भी अनेक स्थानों पर जाकर के अपना ये अनुभव सुना करके वो सेवा करते हैं। तो देखिए, समर्पण किया तो सब कुछ खत्म, पुराने जीवन के जो पाप किए हुए थे सब जीरो हो गए और जीवन कितनी श्रेष्ठ ऊंची बन गई। तो ऐसे ही भगवान के सामने यदि हम समर्पण कर देते हैं, अपना तन मन धन हम समर्पण करते हैं, यानी तन को जितना हम श्रेष्ठ कार्य में लगा सकते हैं ईश्वर की श्रीमत अनुसार हम करें, जैसा भी तन हमें मिला है उसे मुझे सफल करना है। मन से हम सदा शुभ भावना शुभ कामनाएं रखते हैं, धन की भी जितनी सेवा यथाशक्ति यथा योग्य हम किसी के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम कर सकते हैं उतना हम करते हैं, वो हम सफल करते हैं, यानी ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण भाव होता है तो हमारे पाप कर्म जो भी पिछले हमने किए हुए हैं वो सब खाते क्लियर होने लगते हैं, वो खाते हमारे समाप्त होने लगते हैं और नया भाग्य का निर्माण हम अपना करने लगते हैं। ये हम अनुभव भी करते हैं अपने जीवन में। तो ये वर्तमान समय संगम युग का समय है, जो समय ईश्वर स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर के अपनी श्रीमत हमें देते हैं, वो आपने समझा है। परमात्मा का ज्ञान आपको दिया गया, परिचय दिया गया कि वर्तमान समय ये कलयुग का अंतिम समय है। और भी विस्तार में एक और सत्र है जो आप सेवा केंद्रों पर जाकर के इस विषय पर समझ सकते हैं। तो ये कर्मों की गति परमात्मा ने, जिसे हम बहुत गुह्य कहते हैं, वो समझाई है कि इसके अनुसार हमारे पूरे कल्प की प्रारब्ध बनती है। ये वर्तमान समय है जब हम बना निर्माण करते हैं अपने भाग्य का, और अभी नहीं तो कभी नहीं। तो फिर क्या करना है, कहते हैं जब जागे तब सवेरा, जब हमें वो ज्ञान हो गया उस दिन से उस घड़ी से ही हमें उस समय को सफल करना प्रारंभ कर देना है। ओम शांति। तो अभी हम सभी, जैसे आप रोज राजयोग का अभ्यास करते हैं, सीधे होकर बैठेंगे। अपने मन को आसपास के आवाजों से, व्यक्तियों से न्यारा कर लें और मन को तैयार करें अंतर यात्रा के लिए, रूहानी यात्रा के लिए। विचार दें, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, एक चमकते हुए सितारे के समान। मैं अचर अमर अविनाशी शक्ति हूं। मस्तक के मध्य में मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कर्म करने के लिए मैंने इस शरीर का आधार लिया है। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूं। अपने निजी स्वभाव में मैं शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं सत चित आनंद स्वरूप हूं। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। इस संसार में जन्म पुनर्जन्म के चक्र में मैंने अनेक नाम रूप वाले शरीर धारण किए हैं। कर्म किए हैं जिसका प्रभाव मुझ आत्मा पर है। पुनः मुझे उन कर्मों के प्रभाव से मुक्त होकर अपनी शुद्ध और सत्व प्रधान स्थिति में आनंद स्वरूप की स्थिति में पवित्रता की स्थिति में वापस लौटना है। स्वयं शिव बाबा जो मेरे परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं, सद्गुरु हैं, वो इस धरा पर अवतरित होकर मुझे सद ज्ञान सद विवेक प्रदान कर रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम से इस सृष्टि पर आई हूं, जो सूर्य चांद तारों से भी पार है। मुक्ति धाम है, जहां मैं आत्मा कर्मों के बंधन से देह और देह के संबंधों से पूर्णतया मुक्त हूं। ये मुक्ति की अवस्था है, जहां मैं ज्योति स्वरूप में निवास करती हूं। शिव बाबा परम ज्योति हैं, शांति के सागर हैं। प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। उनकी समीपता में मैं उस शांति प्रेम आनंद का प्रवाह स्वयं में अनुभव कर रही हूँ। शिव बाबा ही मेरे सच्चे माता पिता हैं, उनकी श्रीमत से मैं अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाऊंगी। वो मेरे सदा कल्याणकारी पिता हैं। मैं उनका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और अब आ जाएं पुनः इस भौतिक जगत में। अब मेरे मन की स्थिति पहले से अधिक शांत अधिक शक्तिशाली है, और अपने पूरे दिन के कार्य व्यवहार में मैं ये स्मृति में रखूंगी और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाऊंगी। ओम शांति शांति। Thank you.